प्यारे विद्यार्थियों, श्री बालाजी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। हम कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान में हमारे भारत अध्याय के बारे में अध्ययन कर रहे थे। हमने भारत की सामान्य जानकारी के बारे में अध्ययन कर लिया है। आज हम भारत के भौतिक प्रदेशों के बारे में चर्चा करेंगे, अध्ययन करेंगे। भारत को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, भौतिक विविधताएं किस प्रकार की पाई जाती हैं तथा उसके भौतिक प्रदेशों के विस्तार के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो भारत के भौतिक प्रदेश, हमारा भारत एक विशाल देश होने के कारण इसमें अनेक भौतिक विविधताएं विद्यमान हैं। अनेक प्रकार की भौतिक विविधताएं हमारे देश में पाई जाती हैं, क्योंकि हमारा भारत देश एक विशाल देश है। जो हमने पढ़ा इसी अध्याय में, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। इस कारण भारत विशाल देश होने के कारण भारत में भौतिक विविधताएं भी विद्यमान हैं। जैसे कहीं ऊंचे पर्वत, कहीं कहीं पर ऊंचे पर्वत तो कहीं समतल मैदान, कहीं पर समतल मैदान देखने को मिलते हैं। कई असमान पठार तो कहीं तटीय मैदान, कई मरुस्थल, कहीं पर मरुस्थल हैं तो कहीं द्वीप समूह स्थित हैं। इस प्रकार भारत में अनेक प्रकार की भौतिक विविधताएं विद्यमान हैं। इन भौतिक विविधताओं के आधार पर हमारे भारत को 6 प्रमुख भौतिक प्रदेशों में बांटा जा सकता है। इन भौतिक विविधताओं के आधार पर भारत को 6 प्रमुख भौतिक प्रदेशों में बांटा जा सकता है, जिसमें पहला भौतिक प्रदेश उत्तरी और उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश। प्रथम भौतिक प्रदेश है उत्तरी और उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश, इसको हम हिमालय पर्वत कह सकते हैं, हिमालय पर्वत, क्योंकि हिमालय पर्वत उत्तरी और उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेशों में आता है। दूसरा भौतिक प्रदेश है गंगा का मैदानी प्रदेश। तीसरा है दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। चौथा है तटीय मैदान। पांचवा है थार का मरुस्थल। छठा है द्वीप समूह। इस प्रकार भारत को 6 भौतिक प्रदेशों में बांटा जा सकता है। पहला उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश, दूसरा गंगा का मैदानी प्रदेश, तीसरा दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, चौथा तटीय मैदान, पांचवा थार का मरुस्थल और छठा है द्वीप समूह। तो हम पहले भौतिक प्रदेश उत्तरी और उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश के बारे में चर्चा करेंगे। भारत के उत्तर और उत्तरी पूर्वी भाग में लगभग 2500 किलोमीटर लंबी हिमालय पर्वत श्रृंखला स्थित है। भारत के उत्तर और उत्तरी पूर्वी भाग में लगभग 2500 किलोमीटर लंबी हिमालय पर्वत श्रृंखला स्थित हैं, जो विश्व की सबसे ऊंची व नवीन पर्वत श्रृंखला है, जो संपूर्ण विश्व की सबसे ऊंची व नवीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर भी यही स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वह भी इसी प्रदेश में स्थित है। ऊंचाई के कारण इसका अधिकांश भाग बर्फ से ढका रहता है। इसलिए इसे हिमालय यानी बर्फ का घर कहा जाता है। उत्तरी और उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश को बर्फ का घर भी कहते हैं। हिमालय हिमालय का शाब्दिक अर्थ है बर्फ का घर, हिम प्लस आले इसका संधि विच्छेद होता है, हिम यानी बर्फ, आले यानी घर। हिमालय पर्वत दक्षिण से उत्तर की ओर तीन समानांतर श्रेणियों में बटा हुआ है। हमारा देश हिमालय पर्वत है दक्षिण से उत्तर की ओर क्रमशः तीन समानांतर श्रेणियों में बटा हुआ है, जिसमें पहली श्रेणी है शिवालिक, शिवालिक, दूसरी है मध्य हिमालय या हिमाचल, और सबसे उत्तर में हिमाद्री या वर्त हिमालय है। इस प्रकार हिमालय पर्वत दक्षिण से उत्तर की ओर तीन समानांतर श्रेणियों में बांटा गया है, शिवालिक, मध्य हिमालय और हिमाद्री या वर्त हिमालय। उत्तर पश्चिम से लेकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक विस्तृत हिमालय की श्रेणियां दक्षिण दिशा में मुड़कर पूर्वोत्तर की असम, म्यांमार पर्वत श्रेणी की पटकोई और नागा पहाड़ियों में मिल जाती हैं। उत्तर पश्चिम से लेकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक विस्तृत हिमालय की श्रेणियां दक्षिण दिशा में मुड़कर पूर्वोत्तर की असम, म्यांमार पर्वत श्रेणी की पटकोई और नागा पहाड़ियों में मिल जाती है। हमारे देश में कृषि और अन्य आवश्यकताओं हेतु सतत जलापूर्ति के लिए इन पर्वत श्रेणियों का महत्वपूर्ण योगदान है। हिमालय और पूर्वोत्तर पर्वत श्रृंखलाओं की स्थिति और बनावट हिंद महासागर से आने वाली आर्द्र मानसूनी पवनों को रोककर भारत में वर्षा कराने में सहायक है। हिमालय और पूर्वोत्तर पर्वत श्रृंखलाओं की स्थिति है जो हिंद महासागर से आने वाली आर्द्र मानसूनी पवनों को रोककर भारत में वर्षा कराने में सहायक सिद्ध होती हैं। भारत के अधिकांश भूभाग पर मानसूनी पवनों से वर्षा होती है। भारत के अधिकांश भाग पर किन पवनों से वर्षा होती है? मानसूनी पवनों से वर्षा होती है। तो प्रश्न पूछ लिया जाए, भारत में अधिकांश भूभाग पर वर्षा कौन सी पवनों से होती है? तो मानसूनी पवनों से होती है। इन पर्वतीय प्रदेशों में उत्तर और पूर्वोत्तर भारत की सभी सदानीर नदियां का उद्गम स्थल है। जल संसाधन से संपन्न ये पर्वतीय प्रदेश कई बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के जनक हैं। उत्तरी और उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश जो जल संसाधन से संपन्न प्रदेश हैं, ये इसमें कई बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं होने के कारण इसे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं का जनक भी कहते हैं, जिनसे बिजली, सिंचाई, सघन जनसंख्या वाले शहरों के लिए जल का प्रबंधन होता है। क्योंकि नदी घाटियां अधिक है, जल की उपलब्धता अधिक है, इस कारण से बिजली, सिंचाई, बिजली बनाने में, सिंचाई करने में और सघन जनसंख्या वाले शहरों के लिए जल का प्रबंधन करना में महत्वपूर्ण स्थान है। यह कि वन संपदा अभूतपूर्व जैविक विविधता संजोए हुए हैं। इस पर्वतीय प्रदेश में वन संपदा, वन भी अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं, वन संपदा अभूतपूर्व जैविक विविधता संजोए हुए हैं। इनकी ढलानों पर चाय और फलों के विस्तृत बागान हैं। इस प्रदेश की ढलानों पर चाय और फलों के विस्तृत बागान भी मिलते हैं, जो निमन घाटियों में फूलों और सब्जियों के खेत हैं, जो निमन घाटियों में फूलों और सब्जियों के खेत हैं। या पाई जाने वाली जड़ी बूटियों की मांग समस्त विश्व में। इस प्रदेश में जड़ी बूटियां भी मिलती हैं जिसकी मांग पूरे विश्व में है। पर्यटन के प्रमुख केंद्र यहाँ स्थित है। पर्यटन के प्रमुख केंद्र भी इस प्रदेश में स्थित हैं। इस क्षेत्र के निवासियों की आजीविका यहाँ की जल और वन संपदाओं पर निर्भर है। उत्तरी और उत्तरी पूर्व पर्वतीय प्रदेश के लोगों की आजीविका भी यहाँ की जल और वन संपदाओं पर ही निर्भर है। इन प्रदेशों में वनों की अंधाधुंध कटाई और अन्य संसाधनों के अतिदोहन के कारण या भूस्खलन, मृदा का तीव्र अपरदन आदि से पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ा है। इस प्रदेश में वनों की अंधाधुंध कटाई और अन्य संसाधनों का अतिदोहन होने के कारण भूस्खलन की स्थिति और मृदा का तीव्र अपरदन भी देखने को मिलता है, जो पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बिगाड़ता है। प्राकृतिक और मानवीय संपदाओं से संपन्न यह प्रदेश अनियोजित और विचारहीन मानवीय क्रियाकलापों के कारण विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक और पर्यावरणीय अवनयन से ग्रसित है। प्राकृतिक और मानवीय संपदाओं से संपन्न है यह प्रदेश। इस कारण इस प्रदेश में अनियोजित और विचारहीन मानवीय क्रियाकलापों के कारण विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक और पर्यावरणीय अवनयन भी पाया जाता है। भूस्खलन, ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन की घटनाएं घटती हैं। जो ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र हैं उनमें भूस्खलन की घटना घटने का डर रहता है। पर्वतीय क्षेत्रों में गुरुत्वाकर्षण के सहारे भूमि का अचानक ऊपर से नीचे की ओर खिसकना भूस्खलन कहलाता है। पर्वतीय क्षेत्रों में गुरुत्वाकर्षण के सहारे भूमि का अचानक ऊपर से नीचे की ओर खिसकना भूस्खलन कहलाता है। तो भूस्खलन क्या है? भूमि का अचानक ऊपर से नीचे की ओर खिसकना भूस्खलन कहलाता है। वर्षा ऋतु में जल एवं चिकनाई के कारण ये घटना घटित होती हैं। वर्षा ऋतु में जल एवं चिकनाई के कारण, वर्षा ऋतु में जल की अधिकता और चिकनाई के कारण ये भूस्खलन की घटना घटित होती है। कभी कभी ये घटना इतने विस्तृत क्षेत्रों में होती हैं कि पर्वत की तलहटी में बसने वाले लोगों के घर नीचे दब जाते हैं। कभी कभी ये घटना है इतने विस्तृत क्षेत्रों में हो जाती हैं कि पर्वत की तलहटी में रहने वाले लोगों के घर नीचे दब जाते हैं तथा जान माल का भी नुकसान होता है। हिमालय पर्वत में इस तरह की घटनाएं आम बात हैं। हिमालय पर्वत में इस तरह की घटनाएं आम बात हैं। दक्षिण भारत में पश्चिमी घाट में भी ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं। दक्षिण भारत में भी पश्चिमी घाट के अंदर ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं। इस प्रकार की घटनाओं से बचने के लिए हमें पर्वत के निकट घर निर्माण या किसी भी प्रकार के विकास कार्य नहीं करने चाहिए। इस प्रकार की घटनाओं से बचने के लिए हमें पर्वत के निकट घर निर्माण या किसी भी प्रकार का विकास कार्य नहीं करना चाहिए। यह हमने पहला भौतिक प्रदेश पड़ा भारत का उत्तरी और उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश। इसमें और मुख्य बात है हिमालय में तिब्बत व नेपाल की सीमा पर स्थित माउंट एवरेस्ट, जो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जिनकी ऊंचाई औसत समुद्र तल से 8848 मीटर है। तो इसी भौतिक प्रदेश में विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी भी अवस्थित है, जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 8848 मीटर। तो प्रश्न पूछ लिया जाए विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो माउंट एवरेस्ट है, जो तिब्बत व नेपाल की सीमा पर है और इसकी ऊंचाई है 8848 मीटर। इस प्रकार उत्तरी और उत्तरी पूर्वी प्रदेश के बारे में हमने अध्ययन किया है। अब दूसरा भौतिक प्रदेश है गंगा का मैदानी प्रदेश। गंगा का मैदानी प्रदेश हिमालय के समानांतर दक्षिण में उत्तर का विशाल मैदानी प्रदेश स्थित है। हिमालय के समानांतर दक्षिण में उत्तर का विशाल मैदानी प्रदेश स्थित है। यह गंगा, सतलज व ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों के द्वारा हिमालय से बहाकर लाई गई मिट्टी से बना है। यह गंगा, सतलज व ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों के द्वारा हिमालय से बहाकर लाई गई मिट्टियों से बना है, इस कारण यह गंगा का मैदानी प्रदेश माना जाता है। नवीन जलोढ़ मिट्टी के कारण ये भारत का सबसे उपजाऊ भूभाग है। भारत का सबसे उपजाऊ भूभाग है गंगा का मैदानी प्रदेश। भारत में सर्वाधिक कृषि इसी मैदान में की जाती है। भारत में अधिकतर कृषि, सबसे अधिक कृषि है गंगा के मैदानी प्रदेश में ही की जाती है। इसे भारत का अन्न भंडार भी कहा जाता है। इस कारण गंगा के मैदानी प्रदेश को भारत का अन्न भंडार कहा जा सकता है। इस मैदान में स्थित अपेक्षाकृत ऊंचे भाग, जहां प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता है, वहां पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इसी मैदान के अंदर स्थित अपेक्षाकृत जो ऊंचे भाग हैं, जहां पर प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है, जिससे नहीं पहुंचता है, वहाँ पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, उसे भांगर कहते हैं। यानी जिस भाग में बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष नहीं पहुँचता है और जहाँ पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, उसे भांगर कहा जाता है। इसके उदाहरण मुख्यतः मैदान के पश्चिमी हिस्से में देखे जा सकते हैं। इसके विपरीत ऐसे निचले भाग जहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी पहुंचकर नवीन जलोढ़ मिट्टी बिछाता है, उसे खादर कहा जाता है। इसके विपरीत ऐसे निचले भाग है जहां पर प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी पहुंच जाता है और नवीन जलोढ़ मिट्टी का निर्माण करता है, बिछाता है, उसे खादर कहा जाता है। इसके उदाहरण मुख्यतः मैदान के पूर्वी हिस्से में बांगर के उदाहरण मैदान के पश्चिमी हिस्से में देखे जाते हैं और खादर के उदाहरण है मैदान के पूर्वी हिस्से में देखे जाते हैं। हिमालय के पर्वतपदीय क्षेत्र में कंकड़ पत्थर से निर्मित पतले मैदानों को हिमालय के पर्वतपदीय क्षेत्र हैं, उसमें कंकड़ पत्थर से निर्मित जो पतले मैदान हैं, उसे भाबर कहते हैं। भाबर, कंकड़ पत्थर से निर्मित जो पतले मैदान हैं, उसे भाबर कहते हैं। और इस प्रदेश में जो दलदली मैदान हैं, दलदली मैदान, उसे तराई कहते हैं। दलदली मैदानों को तराई कहते हैं और कंकड़ पत्थर से निर्मित जो पतले मैदान हैं, उसे भाबर कहते हैं। प्राचीन काल में विभिन्न नदी घाटी सभ्यताओं की उत्पत्ति और विकास इन्हीं मैदानों में हुआ है। प्राचीन काल में विभिन्न नदी घाटी सभ्यताओं की उत्पत्ति और विकास इन्हीं मैदानों में हुआ है। समतल, उपजाऊ मिट्टी, अनुकूल और पर्याप्त वर्षा के कारण भारत की सर्वाधिक जनसंख्या इन मैदानी भागों में रहती है, क्योंकि यह समतल भूमि, उपजाऊ मिट्टी, अनुकूल और पर्याप्त वर्षा के कारण भारत की सबसे अधिक जनसंख्या गंगा के मैदानी प्रदेश में रहती है। इस मैदानी भूभाग में परिवहन व उद्योगों का भी काफ़ी विकास हुआ है। क्योंकि यहाँ की भूमि है, समतल है, यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है और पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है, इस कारण है वहाँ पर परिवहन व उद्योगों का विकास होना अवश्यंभावी है। इस प्रकार हमने आज दो भौतिक प्रदेशों के बारे में चर्चा की है। भारत को कुल छः भौतिक प्रदेशों में बांटा है, जिसमें से हमने आज दो भौतिक प्रदेशों के बारे में अध्ययन किया है। पहला उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश और दूसरा गंगा का मैदानी प्रदेश। इसके बारे में दो तीन प्रश्न जो इम्पोर्टेंट बन रहे हैं, जो मैं बोल देता हूँ, वो लिख लें और याद कर लें। पहला प्रश्न लिखें, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है तथा इसकी ऊंचाई कितनी है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है तथा इसकी ऊंचाई कितनी है। आंसर लिखें, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट है जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। 8,848 मीटर है। दूसरा प्रश्न लिखें, सर्वाधिक जनसंख्या किस भूभाग में पाई जाती है। सर्वाधिक जनसंख्या भारत के किस भौतिक प्रदेश में पाई जाती है। गंगा के मैदानी प्रदेश में। उत्तर लिखें, गंगा का मैदानी प्रदेश। तीसरा प्रश्न लिखें, ग्रह कार्य के लिए बांगर व खादर में क्या अंतर है। बांगर व खादर में क्या अंतर है। इसका आंसर स्वयं लिखें और याद करें। इसी के साथ आज का ये टॉपिक यही समाप्त करते हैं। कल हम आगे जो बचे हुए भौतिक प्रदेश हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।